यरमिया अध्याय 48। यरमिया अध्याय 48 में वो मोआब के विरुद्ध भविष्यवाणी देता है। मोआब यर्दन पार पूर्वी दिशा में स्थित था। यरमिया अध्याय 48 पद 1। मोआब के विषय इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, नबू पर हाय, क्योंकि वो नाश हो गया। ये नबू पर्वत नहीं है, ये उस समय मोआब का एक नगर नबू था। यरमिया अध्याय 48 पद 1 में आगे लिखा है, किर्यातेम की आशा टूट गई, वो ले लिया गया है, ऊंचा गढ़ निराश और विस्मित हो गया है। ये दो नगर थे। यरमिया अध्याय 48 पद 2 से लेकर 7 तक। मोआब की प्रशंसा जाती रही, हेशबोन में उसकी हानि की कल्पना की गई है, आओ हम उसको ऐसा नाश करें कि वो राज्य न रह जाए। हे मदमेद, तू भी सुनसान हो जाएगा, तलवार तेरे पीछे पड़ेगी। होरनेम से चिल्लाहट का शब्द सुनो, नाश और बड़े दुख का शब्द सुनाई देता है। मोआब का सत्यनाश हो रहा है, उसके नन्हे बच्चों की चिल्लाहट सुन पड़ी, क्योंकि लोहित की चढ़ाई में लोग लगातार रोते हुए चढ़ेंगे और होरोमेन के उतार में नाश की चिल्लाहट का संकट हुआ है। भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उस अधमरे पेड़ के समान हो जाओ जो जंगल में होता है, क्योंकि तू तो अपने कामों और संपत्ति पर भरोसा रखता है, इस कारण तू भी पकड़ा जाएगा और खामोश देवता भी अपने याजकों और हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। उन्होंने अपने कामों पर और अपना धन दौलत पर भरोसा रखा था। मनुष्य सामान्यतः इन्हीं बातों पर भरोसा रखता है। आज भी अनेक जन परमेश्वर के सामने आने के लिए कर्म कांड पर भरोसा रखते हैं। अनेक जन अपनी संपत्ति को सुरक्षा समझते हैं, परंतु परमेश्वर के न्याय में इनका कोई स्थान नहीं है। यरमिया अध्याय 48 पद 8 से लेकर 10 तक। यहोवा के वचन के अनुसार नाश करने वाले तुम्हारे हरेक नगर पर चढ़ाई करेंगे और कोई नगर ना बचेगा। नीचन वाले और पहाड़ पर की चौरस भूमि वाले दोनों नाश किए जाएंगे। मोआब के पंख लगा दो ताकि वो उड़कर दूर हो जाए, क्योंकि उसके नगर ऐसे उजाड़ हो जाएंगे कि उनमें कोई भी ना बसने पाएगा। शापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। इसे अपनी बाइबल में रेखांकित कर लीजिए। परमेश्वर उस व्यक्ति को ये श्राप देता है जो इसके काम में धोखा करता है। यरमिया अध्याय 48 पद 10 और 11। और वो भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। मोआब बचपन ही से सूखी है, उसके नीचे तलचट है, वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया और ना बंधुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध जो का त्यों बनी रहती है। परमेश्वर ने मोआब के विनाश के बारे में कहा था, यहां वो उसका कारण बता रहा है। बचपन से ही सुखी है, मोआब को आज तक किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है, वो सुरक्षित रखा गया है, उसे शरण प्रदान की गई है और यही कारण है कि वो दुर्बल हो गया है, इसलिए अब वो गिरने वाला है। वो दाक मधु बनाने की प्रक्रिया के द्वारा मोआब का वर्णन करता है। उसके नीचे तलछट है। दाक मधु बनाने के लिए अंगूर के रस को एक बहुत बड़े पात्र में भर दिया जाता है और उसे खमीर होने के लिए रख दिया जाता है। खमीर की इस क्रिया में उसके नीचे तलछट जमा हो जाता है। खमीर की क्रिया पूर्ण होने पर दाखरस को निथार लिया जाता है, उसे फिर रख दिया जाता है कि उसका तलछट जमा हो जाए, तदोपरांत उसे दूसरे पात्र में निथार लिया जाता है। इस प्रकार इस क्रिया को तब तक दोहराया जाता है जब तक कि दाखमधु निर्मल एवं शुद्ध न हो जाए। यदि आप दाखमधु को तलछट से पृथक न करेंगे तो तलछट खट्टा होकर दुर्गंध देने लगेगा। परमेश्वर कहता है कि मोआब की यही स्थिति है, वो आराम में है, उसने कठिनाइयों का सामना नहीं किया है, उसकी शांति में किसी ने बाधा नहीं डाली है, इसलिए उसका तलछट खट्टा होकर दुर्गंध दे रहा है। दाक मधु में खट्टा स्वाद आता है, अतः मोआब नाश किया जाएगा। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब परमेश्वर हमें एक पात्र से दूसरे पात्र में और दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में डालता है, तब हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। हमारा स्वभाव यह है कि हम शिथिल पड़े रहे, हम सुविधाओं में रहना चाहते हैं, हम विश्राम करना चाहते हैं और तब सोचते हैं कि हमने उद्धार पा लिया और इस प्रकार हमारा क्षय होने लगता है। ऐसी अवस्था एक महान संकट यह है कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और उससे दूर हो जाते हैं। नहीं नहीं, परमेश्वर का स्थान मेरे जीवन में है, मेरे मन में परमेश्वर के लिए एक स्वच्छ छोटा सा कक्ष है। परमेश्वर तू आ, स्वतंत्र होकर जब चाहे तू आ, मैं तो तुझे पाकर सदा प्रसन्न होता हूं। ऐसा ना हो कि तू अगले सप्ताह आए, क्योंकि उस समय तो हम छुट्टी पर जाएंगे। परंतु कभी भी आ प्रभु, परंतु दो सप्ताह बाद हम छुट्टी पर फिर से जाएंगे, परंतु तू कभी भी आ, हम तुझे पाकर प्रसन्न होते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि हम किस प्रकार परमेश्वर को बाहर ही रखते हैं और हमारे सांसारिक जीवन में हम तलछट जमा करते जाते हैं जो संसारिकता है। परमेश्वर के प्रति समर्पण से दूर होना कितना आसान है। इब्रानियों की पुस्तक में हमें निर्देश दिया गया है, इब्रानियों अध्याय 2:1, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। हमारे जीवन में ऐसे समय होते हैं जब परमेश्वर हमें एक पात्र से दूसरे पात्र में उंडेलता है, तब हम कहते हैं परमेश्वर ये सब क्या हो रहा है, तब अचानक ही हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर जाता है, वो हमारे साथ व्यवहार करने लगता है, तब हम अपना समर्पण नया करके कहते हैं हे प्रभु मुझे क्षमा कर, और हम वास्तव में पश्चाताप करते हैं, हम परमेश्वर को दिए वचन को स्मरण करते हैं और हम अपनी विफलताओं तथा परमेश्वर से दूर होने के लिए पछतावा करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को अनेक रूपों में बाधित करता है, वो हमें शुद्ध करने के लिए ऐसा करता है, हमें बहुत अधिक सांसारिकता है इसलिए वो हम पर रोग आने देता है, हमें दुर्घटनाग्रस्त होने देता है, हमारी नौकरी चली जाने देता है, ये हमारी शोधन प्रक्रिया है। मानवीय स्वभाव है कि संसारिकता में लिप्त रहें। परमेश्वर कहता है ये तेरे जीवन में व्याप्त हो गई है, अतः तुझसे दुर्गंध आती है, इसलिए वो हमें दूसरे पात्र में उंडेलता है कि हमारा परिशोधन हो। मोआब के साथ ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए वो नाश किया जाएगा। यरमिया अध्याय 48:12-13, इस कारण यहोवा की ये वाणी है, ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसके उंडेलने के लिए भेजूंगा और वे उसको उंडेलेंगे, और जिन घड़ों में वो रखा हुआ है उनको चूचे करके फोड़ डालेंगे। तब जैसे इसराइल के घराने को बेतेल से लज्जित होना पड़ा जिस पर वे भरोसा रखते थे, अब वो मोआबियों का देवता था। पद 13 में आगे लिखा है, वैसे ही मोआबी लोग कमोश से लज्जित होंगे। बेथेल इसराइल का आराधना स्थान था जिसके विनाश से वे लज्जित किए गए थे। मोआबियों का आराधना स्थल कामिश था, अतः यहोवा कहता है कि कामोश की हालात भी बेतेल की सी होगी। यरमिया अध्याय 48 पद 14 से लेकर 21 तक, तुम कैसे कह सकते हो कि हम वीर और पराक्रमी योद्धा है? मोआब तो नाश हुआ, उसके नगर भस्म हो गए और उसके चुने हुए जवान घात होने को उतर गए। राजाधिराज जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसकी ये वाणी है, मोआब की विपत्ति निकट आ गई और उसके संकट में पड़ने का दिन बहुत ही वेग से आता है। उसके आसपास के सब रहने वालों और उसकी कीर्ति के सब जानने वालों, उसके लिए विलाप करो, कहो हाय, वो मजबूत सोटा और सुंदर छड़ी कैसे टूट गई है। हे दिबोन की रहने वाली, तू अपना विभव छोड़कर प्यासी बैठी रह, क्योंकि मोआब के नाश करने वाले ने तुझ पर चढ़ाई करके तेरे दृढ़ गढ़ों को नाश किया है। हे अरुएर की रहने वाली, तू मार्ग में खड़ी होकर ताकती रह, जो भागता है उससे और जो बच निकलती है उससे पूछ कि क्या हुआ है। मोआब की आशा टूटेगी, वो विस्मित हो गया। तुम हाय हाय करो और चिल्लाओ, अर्नोन में भी ये बताओ कि मोआब नाश हुआ है, चौरस भूमि के देश में होलोन। ये मोआब के नगर है जिनका नाश हो गया। यरमिया अध्याय 48 पद 24 से लेकर 27 तक, मोआब देश के सारे नगरों में दंड की आज्ञा पूरी हुई है। यहोवा की ये वाणी है, मोआब का सींग कट गया और भुजा टूट गई है, उसको मतवाला करो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध बड़ाई मारी है। इसलिए मोआब अपनी छाट में लौटेगा और ठट्टों में नहीं उड़ाया। क्या तूने भी इसराइल को ठट्टों में नहीं उड़ाया? इसराइल के विनाश के समय मोआब ने भी इसराइल पर आक्रमण किया था, इसलिए मोआब के साथ भी वैसा ही होगा कि वो भी ठट्टों का पात्र हो। यरमिया अध्याय 48 पद 27 में आगे लिखा है, क्या वो चारों के बीच पकड़ा गया था कि जब तू उसकी चर्चा करता तब तू सिर हिलाता था? वे इसराइल के विनाश पर आनंद करते थे। यरमिया अध्याय 48 पद 28 से लेकर 37 तक, हे मोआब के रहने वालों, अपने अपने नगर को छोड़कर डांग के दरार में बसो, उस पंडुकी के समान हो जाओ जो गुफा के मुंह की एक ओर घोंसला बनाती हो। हमने मोआब के गर्व के विषय में सुना है कि वो अत्यंत अभिमानी है, उसका गर्व अभिमान और अहंकार और उसका मन फूलना प्रसिद्ध है। यहोवा की ये वाणी है, मैं उसके रोष को भी जानता हूं कि वो व्यर्थी है, उसके बड़े बोल से कुछ बन ना पड़ा, इस कारण मैं मोआबियों के लिए हाय हाय करूंगा, हां मैं सारे मोआबियों के लिए चिल्लाऊंगा कि हेरस के लोगों के लिए विलाप किया जाएगा। हे सिम्बा की दाखलता, मैं तुम्हारे लिए याजेर से भी अधिक विलाप करूंगा। तेरी डालियां तो ताल के पार बढ़ गई, वरन याजेर के ताल तक भी पहुंची थी, पर नाश करने वाला तेरे धूप काल के फलों पर और तोड़ी हुई दाकों पर भी टूट पड़ा है। फल वाली बारियों से और मोआब के देश से आनंद और मग्न होना उठ गया है। मैंने ऐसा किया कि दाक रस के कुंडों में कुछ दाक मधु ना रहा, लोग फिर ललकारते हुए दाक ना रौंदेंगे। जो ललकार होने वाली है वो अब नहीं होगी। हेशबोन की चिल्लाहट सुनकर लोग एलाले और यहस तक और सोआर से होरोनेम और एलगाट शलिशिया तक भी चिल्लाते हुए भागे चले गए हैं, क्योंकि निम्रिम का जल भी सूख गया है। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं ऊंचे स्थान पर चढ़ावा चढ़ाना और देवताओं के लिए धूप जलाना दोनों को मोआब में बंद कर दूंगा। इस कारण मेरा मन मोआब और किर हेरिस के लोगों के लिए बांसुली सा रो रो कर आलापता है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कमाकर बचाया है वो नाश हो गया है, क्योंकि सबके सिर मुंडे गए और सबकी दाढ़ियां नोची गई, सबके हाथ चीरे हुए और सबके कमरों में टाट बंधा हुआ है। अन्य जातियां विलाप करने के लिए अपने सिर मुंडा लेती थी, ये उनकी प्रथा थी। वे अपनी दाढ़ी भी मुंडा लेते थे तथा अपना शरीर को जगह जगह काट लेते थे। वे टाट का बना वस्त्र पहनते थे। ये विलाप का प्रतीक था। इसी प्रकार यहोवा कहता है कि मोआब भी विलाप करेगा। यरमिया अध्याय 48 पद 38। मोआब के सब घरों की छतों पर और सब चौकों में रोना पीटना हो रहा है, क्योंकि मैंने मोआब को तुच्छ बर्तन की नाई तोड़ डाला है, यहोवा की ये वाणी है। देखिए कैसा सजीव वर्णन, यरमिया अध्याय 48 पद 39 से लेकर 42 तक। मोआब कैसे विस्मित हो गया, हाय हाय करो, क्योंकि उसने कैसे लज्जित होकर पीठ फेरी है। इस प्रकार मोआब के चारों ओर के सब रहने वाले उसका ठट्ठा करेंगे और विस्मित हो जाएंगे, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो वो उकाब सा उड़ेगा और मोआब के ऊपर अपने पंख फैलाएगा। किर्योत ले लिया गया और गढ़ वाले नगर दूसरों के वश में पड़ गया। उस दिन मोआबी वीरों के मन जचा स्त्री कैसे हो जाएंगे, और मोआब ऐसा तितर बितर हो जाएगा कि उसका दल टूट जाएगा, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध बड़ाई मारी है। क्या कभी किसी मोआबी से आपकी भेंट हुई है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि वे मानव जाति से ही मिटा दिए जाएंगे। यरमिया अध्याय 48 पद 43 से लेकर 47 तक। यहोवा की ये वाणी है कि हे मोआब के रहने वाले, तेरे लिए भय और गड्ढा और फंदे ठहराए गए हैं। जो कोई भय से भागे वो गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वो फंदे में फंसेगा, क्योंकि मैं मोआब के दंड का दिन उस पर ले आऊंगा, यहोवा की यही वाणी है। जो भागे हुए हैं ये हेशबोन में शरण लेकर खड़े हो गए हैं, परंतु हेशबोन से आग और सीहोन के बीच से लौ निकली, जिससे मोआब देश के कोने और बलवियों के चोंडे भस्म हो गए हैं। हे मोआब, तुझ पर हाय, कमोश की प्रजा नाश हो गई, क्योंकि तेरी स्त्री पुरुष दोनों बंधुआई में गए हैं। तो भी यहोवा की ये वाणी है कि अंत के दिनों में मैं मोआब को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। मोआब के दंड का वचन यहीं तक हुआ। ये मोआब के संकट की भविष्यवाणी है, और परमेश्वर अपना कहा पूरा करता है।